ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।
कवि जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कंकाल चतुर्थ खंड भाग 8। नियत दिन आ गया। आज उत्सव का विराट आयोजन है। संघ के प्रांगण में वितान तना है। चारों ओर प्रकाश है। बहुत से दर्शकों की भीड़ है। गोस्वामी जी, निरंजन और मंगलदेव संघ की प्रतिमा के सामने बैठे हैं। एक और घंटी लतिका, गाला और सरला भी बैठी हैं। गोस्वामी जी ने शांत वाणी में आज के उत्सव का उद्देश्य समझाया और कहा, भारत संघ के संगठन पर आप लोग देव निरंजन जी का व्याख्यान दत्तचित होकर सुने। निरंजन का व्याख्यान आरंभ हुआ। प्रत्येक समय में संपत्ति, अधिकार और विद्या ने भिन्न भिन्न देशों में जाति, वर्ण और ऊंचे नीचे की सृष्टि की है। जब आप लोग इसे ईश्वरीय कृत्य विभाग समझने लगते हैं, तब ये भूल जाते हैं कि इसमें ईश्वर का उतना संबंध नहीं जितना उसकी विभूतियों का। कुछ दिनों तक उन विभूतियों का अधिकारी बने रहने पर मनुष्य के संस्कार भी वैसे ही बन जाते हैं, वो प्रमत्त हो जाता है। प्राकृतिक ईश्वरीय नियम विभूतियों का दुरुपयोग देखकर विकास की चेष्टा करता है। यह कहलाती है उत्क्रांति। उस समय केंद्रीय भूत विभूतियां मानव स्वार्थ के बंधनों को तोड़कर समस्त भूत हित के लिए बिखरना चाहती है। वो समदर्शी भगवान की क्रीड़ा है। भारतवर्ष आज वर्णों और जातियों के बंधन में जकड़कर कष्ट पा रहा है और दूसरों को कष्ट दे रहा है। यद्यपि अन्य देशों में भी इसी प्रकार के समूह बन गए हैं, परंतु यहाँ इसका भीषण रूप है। ये महत्व का संस्कार अधिक दिनों तक प्रभुत्व भोग कर खोखला हो गया है। दूसरों की उन्नति से उसे डाहा होने लगी है। समाज अपना महत्व धारण करने की क्षमता तो खो ही चुका है, परंतु व्यक्तियों को उन्नति का दल बनकर सामूहिक रूप से विरोध करने लगा है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी छूंछी महत्ता पर इतराता हुआ दूसरे को नीचा, अपने से छोटा समझता है, जिससे सामाजिक विषमता का विषमय प्रभाव फैल रहा है। अत्यंत प्राचीन काल में इस वर्ण विदेश का ब्रह्मशत्र संघर्ष का साक्षी रामायण है। उस वर्ण भेद के भयानक संघर्ष का ये इतिहास जानकर भी, नित्य उसका पाठ करके भी भला हमारा देश कुछ समझता है? नहीं, ये देश समझेगा भी नहीं। सज्जनों, वर्ण भेद सामाजिक जीवन का कृत्यमार्ग विभाग है। ये जनता के कल्याण के लिए बना है, परंतु द्वेष की सृष्टि में, दंभ का मिथ्या गर्व उत्पन्न करने में वो अधिक सहायक हुआ है। जिस कल्याण बुद्धि से इसका आरंभ हुआ वो ना रहा। गुण कर्मानुसार वर्णों की स्थिति नष्ट होकर अभी जातीय के अभिमान में परिणत हो गई है। उसका व्यक्तिगत परीक्षात्मक निर्वाचन के लिए वर्णों के शुद्ध वर्गीकरण के लिए वर्तमान अतिवाद को मिटाना होगा, कोई नहीं जानता। इसलिए वे व्यर्थ के विवाद हटाकर उस दिव्य संस्कृति, आर्य मानव संस्कृति की सेवा में लगना चाहिए। भगवान का स्मरण करके नारी जाति पर अत्याचार करने से विरत हो। किसी को शबरी के समान अछूत न समझो। किसी को अहिल्या के समान अपनी मत कहो। किसी को लघु न समझो। सर्वभूत हित रत होकर भगवान के लिए सर्वस्व समर्पण करो। निर्भय रहो। भगवान की विभूतियों को समाज ने बांट लिया है, परंतु जब मैं स्वार्थियों को भगवान पर भी अपनी अधिकार जमाए देखता हूँ, तब मुझे हंसी आती है। और भी हंसी आती है जब उस अधिकार की घोषणा करके दूसरों को वो छोटा, नीच और पतित ठहराते हैं। बहुपरिचारिणी जाबाला के पुत्र सत्यकाम को कुलपति ने ब्राह्मण स्वीकार किया था, किंतु उत्पत्ति, पतन और दुर्बलताओं के व्यंग से वे घबराता नहीं। जो दोषपूर्ण आंखों में पतित है, जो निसर्ग दुर्बल है, उन्हें अवलंब देना भारत संघ का उद्देश्य है। इसलिए इन स्त्रियों को भारत संघ में पुनः लौटाते हुए बड़ा संतोष होता है। इन लतिका देवी ने अपना सर्वस्व दान किया है। उस धन से स्त्रियों की पाठशाला खोली जाएगी, जिसमें उनकी पूर्णता की शिक्षा के साथ वे इस योग्य बनाई जाएंगी कि घरों में, पदों में, दीवारों के भीतर नारी जाति के सुख, स्वास्थ्य और संयंत्र स्वतंत्रता की घोषणा करे, उन्हें सहायता पहुंचाए, जीवन के अनुभवों से अवगत कराए, उनमें उन्नति, सहानुभूति, क्रियात्मक प्रेरणा का प्रकाश फैलाए। हमारा देश इस नवयुग के संदेश से स्वास्थ्य लाभ करे। इन आर्य लालनाओं का उत्साह सफल हो, यही भगवान से प्रार्थना है। अब आप मंगलदेव का व्याख्यान सुनेंगे। वे नारी जाति के सम्मान पर कुछ कहेंगे। मंगलदेव ने कहना आरंभ किया, संसार में जितनी हलचल है, आंदोलन है, वह सब मानवता की पुकार है। जननी अपने झगड़ालू कुटुंब में मेल कराने के लिए बुला रही है, उसके लिए हमें प्रस्तुत होना चाहिए। हम अलग ना खड़े रहें, ये समारोह उसी का समारंभ है। एक बार फिर स्मरण करना चाहिए कि लोग एक हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे श्री कृष्ण ने कहा था, अभिवक्त चा भूतेषु विभक्ति चा स्थिति। यह विभक्त होना कर्म के लिए है, चक्र परिवर्तन को नियमित रखने के लिए है, समाज सेवा यज्ञ को प्रगतिशील करने के लिए है, जीवन व्यर्थ ना करने के लिए, पाप की आयु स्वार्थ का बोझ ना उठाने के लिए। हमें समाज के रचनात्मक कार्य में भीतरी सुधार लाना चाहिए। ये ठीक है कि सुधार का काम प्रतिकूल स्थिति में प्रारंभ होता है। सुधार सौंदर्य का साधन है, सभ्यता सौंदर्य की जिज्ञासा है। शारीरिक और आलंकारिक सौंदर्य प्राथमिक है, चरम सौंदर्य मानसिक सुधार का है। मानसिक सुधारों के सामूहिक भाव कार्य करते हैं, इसके लिए श्रम विभाग है। हम अपने कर्तव्य को देखते हुए समाज की उन्नति करें, परंतु संघर्ष को बचाते हुए हम उन्नति करते हुए भौतिक ऐश्वर्य की टीले ना बन जाएं। हाँ, हमारी उन्नति फल फूल वृक्षों की सी हो, जिनमें छाया मिले, विश्राम मिले, शांति मिले। मैंने पहले ही कहा था कि समाज सुधार भी हो और संघर्ष से बचना भी चाहिए। बहुत से लोगों का ये विचार है कि सुधार और उन्नति में संघर्ष अनिवार्य है, परंतु संघर्ष से बचने का एक उपाय है, वह है आत्मनिरीक्षण। समाज के कामों में अतिवाद से बचने के लिए ये उपयोगी हो सकता है। जहां समाज का शासन कठोरता से चलता है, वहां द्वेष और द्वंद्व भी चलता है। शासन की उपयोगिता हम भूल जाते हैं, फिर शासन केवल शासन के लिए चलता रहता है। कहना नहीं होगा कि वर्तमान हिंदू जाति और उसकी उपजातियां इसके उदाहरण हैं। सामाजिक कठोर दंडों से वह छिन्न भिन्न हो रही हैं, जर्जर हो रही हैं। समाज के प्रमुख लोगों को इस भूल को सुधारना पड़ेगा। व्यवस्थापक तंत्रों की जननी प्राचीन पंचायतें नवीन समस्याएं सहानुभूति के बदले द्वेष फैला रही हैं। उनसे कठोर दंड से प्रति हिंसा का भाव जगता है। हम लोग भूल जाते हैं कि मानव स्वभाव दुर्बलताओं से संगठित है। दुर्बलता कहाँ से आती है? लोक अपवाद से भयभीत होकर स्वभाव को पाप कहकर मान लेना एक प्राचीन रूढ़ी है। समाज को सुरक्षित रखने के लिए उसे संगठन में स्वाभाविक मनोवृत्तियों की सत्ता स्वीकार करनी होगी। सबके लिए एक पथ देना होगा। समस्त प्राकृतिक आकांक्षाओं की पूर्ति आपके आदर्श में होनी चाहिए। केवल रास्ता बंद है कह देने से काम न चलेगा। लोकापवाद संसार का एक भय है, एक महान अत्याचार है। आप लोग जानते होंगे कि श्री रामचंद्र ने भी लोकापवाद के सामने सिर झुका लिया था। लोकापवादी बलवालियान तख्तताही मैथिली और इससे पूर्व काल के लोग मर्यादा कहते हैं, वो धर्म की मर्यादा ना थी, वस्तुत समाज शासन की मर्यादा थी, जिसे सम्राट ने स्वीकार किया और अत्याचार सहन किया। परंतु विवेक दृष्टि से विचारने पर देश काल और समाज की सर्वसाधारण नियम भंग अपराध या पाप कहकर न गिने जाए। प्रत्येक नियम अपने पूर्ववर्ती नियम के बाधक होते हैं या उसकी अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए बने रहते हैं। सीता निर्वासन एक इतिहास विशुद्ध महान सामाजिक अत्याचार है और ऐसे अत्याचार अपनी दुर्बल संगिनी स्त्रियों पर प्रत्येक जाति के पुरुष ने किया है। किसी किसी समाज में तो पाप के मूल में स्त्री का ही उल्लेख है और पुरुष निष्पाप है। यह भ्रांत मनोवृत्ति अनेक सामाजिक व्यवस्थाओं के भीतर काम कर रही है। रामायण भी केवल राक्षस वध का इतिहास नहीं है, किंतु नारी निर्यातन का सजीव इतिहास लिखकर वाल्मीकि ने स्त्रियों के अधिकार की घोषणा की है। रामायण में समाज के दो दृष्टिकोण है, निंदक और वाल्मीकि के। दोनों निर्धन थे, एक बड़ा भारी अपकार कर सकता था और दूसरा एक पीड़ित आर्य ललना की सेवा कर सकता था। कहना ना होगा कि उस युद्ध में कौन विजयी हुआ। सच्चे तपस्वी ब्राह्मण वाल्मीकि की विभूति संसार में आज भी महान है। आज भी उस निंदक को, परंतु देखिए तो आवश्यकता पड़ने पर हम आप और निंदकों से ऊंचे हो सकते हैं। आज भी तो समाज वैसे ही लोगों से भरा पड़ा है जो स्वयं मलिन रहने पर भी दूसरों की स्वच्छता को अपनी जीविका का साधन बनाए हैं। हमें इन बुरे उपकरणों को दूर करना चाहिए। हम दूसरों को दबाए रखेंगे उतनी ही हमारी कठिनता बढ़ जाएगी। स्त्री जाति के प्रति सम्मान करना सीखना होगा। हम लोगों को अपना हृदय द्वार और कार्य क्षेत्र विस्तृत करना चाहिए। मानव संस्कृति के प्रचार के लिए हम उत्तरदायी हैं। विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन का रक्त हम में है। संसार भारत के संदेह की आशा में है। हम उन्हें देने के उपयुक्त बने, यही मेरी प्रार्थना है। आनंद की करतल ध्वनि हुई। मंगलदेव बैठा गोस्वामी जी ने उठकर कहा, आज आप लोगों को एक और हर्ष समाचार सुनाऊंगा। सुनाऊंगा ही नहीं, आप लोग उस आनंद के साक्षी होंगे। मेरे शिष्य मंगलदेव का ब्रह्मचार्य की समाप्ति करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का शुभ मुहूर्त भी आज ही है। ये कानन वासिनी गुजर बालिका गाला अपने सत्साहस और दान से सीकरी में एक बालिका विद्यालय चला रही है। इसमें मंगलदेव और गाला दोनों का हाथ है। मैं इन दोनों पवित्र हाथों को एक बंधन में बांधता हूँ, जिनमें सम्मिलित शक्ति से ये लोग मानव सेवा में अग्रसर हो और ये परिणय समाज के लिए आदर्श हो। कोलाहल मच गया। सब लोग गाला को देखने के लिए उत्सुक हुए। सा लज्जा गाला गोस्वामी जी के संकेत से उठकर सामने आई। कृष्ण चरण ने प्रतिमा से दो माला लेकर दोनों को पहना दी। हर्ष कोलाहल हो रहा था। उसी में किसी का डरावना कष्ट सुनाई पड़ा। अच्छा तो है, चंगेज और वर्धना की संतानों की ये सुंदर जोड़ी है। गाला और मंगलदेव ने चौंक कर देखा, पर उस भीड़ में कहने वाला ना दिखाई पड़ा। भीड़ के कुछ पीछे कंबल ओढ़े एक घनी दाढ़ी मूछ वाले युवक का कंधा पकड़कर तारा ने कहा, विजय बाबू, आप क्या प्राण देंगे, हटिए यहाँ से, अभी वो घटना टटकी है। नए नहीं, विजय ने घूमकर कहा, यमुना, प्राण तो बच ही गया, पर ये मनुष्य, तारा ने बात काटकर कहा, बड़ा ढोंगी है, पाखंडी है, यही ना कहना चाहते हो, होने दीजिए, आप संसार भर के ठेकेदार नहीं हैं, चलिए। तारा उसका हाथ पकड़कर अंधकार की ओर ले चली।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।